ब्रिस्बेन स्थित तीन ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं लेनेट मोलिन्यू, प्रोफेसर जॉन फॉस्टर और डॉक्टर लियाम वैगनर ने ऑस्ट्रेलिया के गैलिली बेसिन से भारत के बिहार राज्य में कोयले से उत्पादित बिजली पहुंचाने की कुल कीमत निकालने का प्रयास किया है। यह शोध ऑस्ट्रेलियाई फेडरल सरकार के उन दावों के बाद किया गया जिसमें बताया गया है कि आने वाले वर्षों में यहां की खदानों से निकला कोयला ही भारत के पिछड़े इलाकों में सस्ती बिजली उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने पाया कि यदि हम ऑस्ट्रेलियाई कोयले को भारत में इस्तेमाल करने की सारी लागत और मुनाफा भी मिला लें, तब भी शाश्वत ऊर्जा कहीं ज्यादा सस्ता विकल्प होगा। 565 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति के सकल घरेलू उत्पाद के साथ बिहार में बिना बिजली के घरों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, लगभग 75 मिलियन। बिहार के तुर्की गांव में आज भी 1000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। यहाँ की लोकल सामुदायिक संवाददाता नविता के अनुसार,
करीब 5 साल से बिजली खम्भा गड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक बिजली का नामो निशान नहीं।
यह हाल आजादी के बाद से अब तक राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और सरकारों के बड़े बड़े वादों, जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 3 सूत्रीय कार्यक्रम की आशा के बाद भी ज्यों का त्यों है।
मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है बिहार प्रदेश के लिए, और बिहार प्रदेश के लिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है बिजली, पानी, सड़क।
लेनेट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के ग्लोबल चेंज इंस्टीट्यूट में रिसर्च ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, बताती हैं कि बिहार में 20 वर्षों तक प्रति घर बिजली पहुंचाने के लिए आधारभूत सुविधाएं तैयार करने का कुल खर्च आश्चर्यजनक रूप से 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर आएगा।
बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर आर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ब्यूरो अराउंड 20 मिलियन हाउसहोल्ड्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार। So if you take all of those calculations and you say, well, the minimum amount, the maximum amount that any one household will use, say 0.3 kilowatts, you then extrapolate that for the 20 million households for the purposes of actually understanding just how big your power station has to be. And from there we worked backwards. So once we understood how much energy infrastructure we needed, we could start to cost it, and then we could work out what the costs were associated with transporting it from Australia, or digging it up in Australia and then transporting it all the way across to Bihar.
जबकि इस कोयले के प्रज्वलन से उत्पादित बिजली के लिए निवेश का मूल्य 13.6 सेंट्स प्रति किलोवाट आवर निकला है। इसी प्रकार से क्वींसलैंड के घरों में इससे आधे दामों पर कोयले से उत्पादित बिजली पहुंचाई जा रही है। डॉक्टर लियाम वैगनर के अनुसार इतने बड़े अंतर का कारण ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्क कॉस्ट्स और बिहार में प्रति व्यक्ति औसत दैनिक आय है।
The network costs are associated with transmission of power over long distances. So a centralized electricity generator might be hundreds of kilometers away from a consumer, particularly a household. And along those electricity lines, they lose energy the longer the distance there is to cover. And so the losses can be quite significant over that distance. But also you have to pay for quite significant large power lines from these remote generators. So large coal-fired power stations are never near, you know, a population. They're always sort of away from people because they're quite large pieces of infrastructure. And so you need to pay quite a great deal to get the transmission lines to push the power to consumers. So it's sort of an undue cost that will be put on top of electricity bills because of integrating large-scale non-renewable energy sources.
भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है खाना पकाने तथा गर्मी पैदा करने के लिए पारंपरिक चूल्हे, जिनमें लकड़ी, गोबर के उपले और केरोसिन के स्टोव शामिल हैं। वायु प्रदूषण के अलावा यह आग, गंभीर रूप से जलने, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन और कई अन्य प्रकार की श्वास संबंधी बीमारियों का कारण है। और यदि कोयले को अधिक तापमान पर जलाया जाए तो उससे पैदा होती है कई गुना ज्यादा खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोफेसर माइकल ब्रॉयर के प्रकाशित शोध से पता चला है कि विश्व में प्रतिवर्ष 5.5 मिलियन लोग वायु प्रदूषण से असामयिक मारे जाते हैं। प्रोफेसर ब्रायर ने यूरेका अलर्ट को बताया कि इसमें आधे से ज्यादा मौतें भारत और चीन में होती हैं।
So we have both outdoor air pollution, which is contributed by sources such as power plants, vehicle exhaust, land clearing for agriculture, and then also what we call household air pollution, and that is people using open fires or very inefficient stoves for cooking and heating. This is primarily a problem in rural areas of developing countries of the world. Of the 5.5 million deaths that we estimate in 2013 that are caused by exposure to air pollution around the world, 3 million of those deaths, so more than half, are in China and India.
तो आखिरकार कोयले से उत्पादित बिजली से ना तो बिहार में स्वास्थ्य संबंधी सुधार होंगे और ना ही दूर दराज के गांव के गरीब लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। परंतु लियाम मानते हैं कि अगर बिहार में स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके बिजली उत्पादित की जाए तो यह वहां के लोगों को नौकरी प्रदान करने के साथ ही भारत की आर्थिक तरक्की में भी बड़ा योगदान करेगा।
Oh, so the economic development is largely derived from, I guess, an influx of obviously new technology and skills to workers within the region that previously hadn't had the skills in electricity or energy in general, and constructing small scale grids that hasn't been done before in these rural remote areas does bring economic activity to the area, and of course it improves the skill set of the local people, and they can not only maintain that grid but also sort of play a vital part in bringing electricity to their community.
लेनेट सुझाती हैं कि भारत जैसे देश में नवीकरणीय संसाधनों को कोयले के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
The benefits that are associated with providing electricity from renewable sources in states like Bihar and India are that you don't have to install a huge power station for 30 or 40 years to actually make it affordable. You can actually install what we call biomass plants, which actually burn things like rice husks or sugar cane. And in combination with small hydro projects and in combination with photovoltaic cells, and if you do a combination of those, they actually work out to be affordable in terms of the size of implementation. So you don't have to install very large power stations. You can have small implementations at village level that villagers can actually decide on what to install and how much to install for their own purposes. And then as the technology improves in 5-10 years' time, they'll be able to upgrade that to something better.
अब यह तो वक्त ही बताएगा कि लोग कोयले की सही कीमत पहचानते हैं और सस्ते नवीकरणीय संसाधनों को विकल्प के रूप में चुनने का फैसला करते हैं, जो प्रोफेसर ब्रायर के अनुसार वायु प्रदूषण से निजात दिला सकते हैं।
So one of the unique things about air pollution is that you can't run, you can't hide from it. But we know that if you improve air quality, everybody benefits.